भगवद्गीता 14 अध्याय। पहले हम इस अध्याय का 14वें अध्याय का महात्म्य पाठ करेंगे, उसके बाद गीता के ये 14 अध्याय का श्लोक और तत्पश्चात श्लोक का हिंदी अनुवाद हम पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री ये गीता महात्म्य पद्म पुराण के अंतर्गत है। हर अध्याय का पाठ करने का महात्म्य क्या है उसका वर्णन यहां हुआ है गीता महात्म्य में। महादेव जी पार्वती को कहते हैं इस गीता पाठ की महात्म्य। How many of you here don't understand Hindi? Don't understand Hindi? Hindi understand. How many of you don't understand Hindi? Chitralekha, do you understand Hindi? You don't. Okay. So anyway, maybe later on you can read the English translation. It's available in Veda Ves. If you want, we can give you the printout. Who else is here who need a printout of Gita Mahatma? Not today, but some other time. Hare Krishna. Shri Mahadev Ji kahate hain, Parvati, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेता, अच्छा गंगा नारायण नो गतकाल तो हमी पाठ कर लम ना राघव पंडित 11 अध्याय कर So today will be 13th. Today's 14th. Kalke ke ekor 13th ke ekor eshilo. Raghupan korechilo. Oh, acha. Kalke ami class dini. Radha Swami, there was no class. The day before that. Okay. पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। आप सब ध्यान देकर सुन रहे हैं। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित दो कुत्तियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुत्तियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वो एक बड़ी संदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वो कुत्तिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिन निर्भय होकर सब और वृक्षों के छाया में बैठे रहते हैं। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे। जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था, जो भी 14वें अध्याय पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी, खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वो हफ्ता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुत्तिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के चीत लग गए। फिर भूख प्यासे की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांग गना का रमणीय रूप धारण कर लिया और तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वो भी स्वर्गलोक को चली गई। ये देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों की पूर्व जन्म का वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रमाण करके पूछा, विप्रवर, नीच जोनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूं। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूं। महाराष्ट्र में प्रत्युदत नामक महान नगर है। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोमना था। वो स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैरी के ये याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश को जोनियों का जन्म मिला था। ब्राह्मण ने भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। तो पता चल गया 14वें अध्याय पाठ करने से क्या होता है, मतलब उसके प्रभाव से परम गति प्राप्त होता है। परम गति का मतलब क्या होता है? परम गति मतलब परम धाम की गति। परम धाम कहां है? भगवत धाम ही परम धाम है। भगवान का निवास जहां है वो है परम धाम। तो परम गति प्राप्त होना चाहिए। और परम गति प्राप्त हो प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवत गीता पाठ करना चाहिए। 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग जो ऐसे ही हम ये चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग जो श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं जज्ञत्वा मुनयो सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्ममागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये च व्यथन्ति च ममो योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामहं संभवो सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयो संभवन्ति जा तासां ब्रह्म महज्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्यं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् तत्र सत्यं निर्मलत्या प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन पत्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्तं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्तुतः रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत रजो सत्तं तमश्चैव तमो सत्तं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशाय उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धिं समुत्तम तते लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्म नाम शमस्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन जदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं जाति देहभ्रे तदुत्तमो विदं लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्या कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढजोनिषु जायते कर्म न सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसो फलम् सत्तात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भरतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जघन्न गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्नं गुणेभ्यकर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतश्रुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारो कथं चैतान् त्रीन् गुणानि प्रवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचलते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नैङ्गते समो दुःख सुखस्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियधीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयस्तुल्लास्ता अलोमितारिपक्षयो सर्वारम्भो परित्यागी गुणातीत स उच्यते मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतितैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मनो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखं सैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोग नाम चतुर्दशोऽध्यायः Should we read in English or should we read in Hindi? English पढ़ने से किसको ठीक रहेगा? और किसके लिए हिंदी होना चाहिए? हिंदी ही अधिक हो गया है. ठीक है, एक हिंदी किताब ला. Just reading it, huh? Those who need the English, you can read it afterwards. Shri Bhagavan, ye to Gujarati hai. मैं गुजराती नहीं, मराठी है. शे भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है. इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है. इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है. हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है. हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव जोनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं. भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है. ये हैं सत्व, रजो तथा तमोगुण. हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत दिव्य प्रकृति के संसर्ग में आता है, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो ये तीन गुणों से बधे जाते हैं. हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है. जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं. हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसे इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्म से बच जाता है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीव का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांटते हैं। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांटता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांटता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांटता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण के तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुंती पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट्य होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशुजनि में जन्म धारण करता है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण से स्थित हैं वे नीच नरक लोक को जाते हैं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री गौर निताय की गौर प्रेमानंदे। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्य में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लाघने में समर्थ होता है तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्ट से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लंघता है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाते पर जाने पर उनकी इच्छा करते हैं। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अभिचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, तब उदासीन तथा दिव्यवता बना रहता है। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुढ़ाई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करते हैं और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों में अतीत कहते हैं, प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, मैं जो अमर्त, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के तीन गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल टेक योर लीव नाउ, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड नाउ। So well, you all can have kirtan here. Who will lead the kirtan? Radha Krishna, you want to lead the kirtan?